ये रेडियो नेपाल है। अब मीनू प्रधान से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सूर्य की उपासना कर मनाए जाने वाले छठ महापर्व की हुई शुरुआत। व्रतालुओं ने किया नहाय खाय संपन्न। प्रदेश और स्थानीय तहों को अधिकार सहित मजबूत बनाने की प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने जताई प्रतिबद्धता। चितवन राष्ट्रीय निकुंज में दो गैंडे मृत पाए गए और म्यांमार के चीन प्रांत स्थित एक विद्यालय में हुए सेना के हमले में 8 बच्चों सहित 11 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। छठ पर्व की आज से शुरुआत हो गई है। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से शुरू होने वाली छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं ने आज नहाय खाय संपन्न किया। व्रतालुओं ने आज स्नान कर नए और शुद्ध वस्त्र धारण कर अरबे अरबाइन भोजन ग्रहण किया। विश्व शांति, मानव कल्याण, परिवार में सुख शांति, समृद्धि, संतान प्राप्ति एवं निरोगिता की कामना के साथ श्रद्धालु भक्तिपूर्वक ये व्रत रखते हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने कहा कि प्रदेश और स्थानीय तहों को अधिकार सहित मजबूत बनाया जाएगा। आज तनहों के आम्बो खैरिनी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को मजबूत बनाने के लिए प्रहरी समायोजन आईन, निजामती आईन और शिक्षा आईन को क्रियान्वित करने की जरूरत है। अस्पताल में इमरजेंसी, आधारभूत प्रयोगशाला, एक्सरे, वीडियो एक्सरे, ईसीजी, फार्मेसी लगायत की सेवाइयां माफ कीजिएगा लगायत की सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। आज ही नेकपा माओवादी केंद्र तनहों ने आम्बू खैरनी में आयोजित मेल मिलाप कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि परिवर्तन की रक्षा और देश की सुरक्षा करने के लिए सरकार दृढ़ है। नेकपा एमआलए ने कल के लिए विशेष बैठक बुलाई है। पार्टी केंद्रीय कार्यालय छियासल में बुलाई गई इस बैठक में जन संगठन के पदाधिकारियों और केंद्रीय सदस्यों को बुलाया गया है। ये जानकारी एमआलए उप महासचिव प्रदीप गिवाली ने दी। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासंधि यूएनएफसीसीसी के पक्षधर राष्ट्रों के 28वें सम्मेलन कोप 28 में हिस्सा लेने के लिए आंतरिक तैयारी नेपाल ने शुरू कर दी है। इसके तहत मार्ग शीर्ष 5 गते काठमांडू में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी वन तथा वातावरण मंत्रालय ने दी है। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड के प्रमुख आतिथ्य में होने जा रहे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय अनुकूलन योजना का विस्तृत रूप, राष्ट्रीय निर्धारित योगदान में आधारित कार्यान्वयन योजना और कोप 28 के एजेंडा के विषय में चर्चा की जाएगी। बता दें कि कोप 28 मार्च 14 से 26 गति तक होगा। नेपाल में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस निर्णय के खिलाफ 10 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों पर मार्क्सिस सुनवाई होगी। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सह प्रवक्ता गोविंद घिमिरे ने दी। बता दें कि कार्तिक 27 गते मंत्रिपरिषद की बैठक ने सामाजिक संजाल टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया था। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। चितवन राष्ट्रीय निकुंज में दो गैंडे मृत पाए गए हैं। ऐसी आशंका है कि तस्करों ने इन गैंडों की हत्या की है। निकुंज के पूर्वी सेक्टर अंतर्गत चपरचुली पोस्ट से दक्षिण पूर्व में रहे गड्ढों में ये दोनों मृत पाए गए। ये जानकारी निकुंज के सूचना अधिकारी गणेश तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि इनमें से एक की उम्र 6 साल और दूसरे की 18 साल थी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। आजदांग के नारायण स्थित मानव कल्याण सेवा घर का मुआयना करने पहुंची मंत्री शर्मा ने कहा कि सड़क में रह रहे मानसिक रूप से विक्षिप्त मनुष्यों की सेवा करने से परिवारों के पुनर्मिलन कराने का कार्य सबसे बड़ा धर्म है। इसी तरह आज घोराई उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 15 स्थित कस्तूरी नगर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री शर्मा ने कहा कि हर एक योजना निर्माण से लेकर क्रियान्वयन और मूल्यांकन तक में टोल विकास समिति को काम करने की जरूरत है। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य डॉ शेखर कोइराला ने कहा कि कोशी प्रदेश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए सहमतीय सरकार की आवश्यकता है। आज विराटनगर विमानस्थल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता कोइराला ने कहा कि उन्होंने निकप्पा एमाले सहित की सहमतीय सरकार के लिए पहल की है। बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी में रूसी बौद्ध गुम्बा का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। ये जानकारी रूसी गुम्बा नेपाल के संयोजक इंजीनियर प्रवीण गौचन ने दी। उन्होंने बताया कि नेपाल स्थित रशियन दूतावास, रूस नेपाल मैत्री संघ, रूसी बौद्ध मंदिर निर्माण फाउंडेशन और रूस के बौद्ध मार्ग के संयुक्त पहल में गुम्बा निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जाजरकोट भूकंप पीड़ितों को आकस्मिक आवश्यकता परिपूर्ति के लिए 6 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर का मानवीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ये जानकारी ऑस्ट्रेलिया राजदूतावास ने दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार के चीन राज्य स्थित एक विद्यालय में सेना द्वारा किए गए हवाई हमले में 8 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। गृह युद्ध को झेल रहा म्यांमार सैन्य सरकार विरुद्ध हथियारधारी समूह ने शस्त्र संघर्ष की शुरू किया है। चीन राज्य को सशस्त्र समूह का गढ़ माना जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए म्यांमार के सैनिक हुंटा विरुद्ध लड़ रहे पीपुल्स डिफेंस कोर्स ने भी सत्तारूढ़ हुंटा के ऊपर अतिरिक्त दबाव बढ़ा दिया है। भारत की राजधानी दिल्ली में दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब स्थिति में है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली के बाद इसमें कुछ सुधार की उम्मीद की गई थी, लेकिन आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार बना हुआ था। इस स्थिति से निपटने के लिए तय योजना के मुताबिक कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी तेज कर दी गई है। इस पर आईआईटी कानपुर ने इसे लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली के उपराज्यपाल दोनों को अलग अलग प्रस्ताव दिया है। इनमें उड्डयन व गृह मंत्रालय से मंजूरी का प्रस्ताव भी शामिल है। माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में वायु गुणवत्ता की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों के मुताबिक कृत्रिम बारिश के लिए आसमान में पहले से मौजूद बादलों में सिल्वर आयोडाइड, नमक और सूखे बर्फ को छिड़का जाता है। इस दौरान रासायनिक क्रिया होने से आसमान में मौजूद बादल बरस पड़ते हैं। चीन सहित कई देशों में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निपटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूर्य की उपासना कर मनाए जाने वाले छठ महापर्व की हुई शुरुआत। व्रतालुओं ने किया नहाए खाए संपन्न। प्रदेश और स्थानीय तहों को अधिकार सहित मजबूत बनाने की प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने जताई प्रतिबद्धता। चीतवन राष्ट्र निकुंज में 2 गैंडे मृत पाए गए और म्यांमार के चीन प्रांत स्थित एक विद्यालय में हुए सेना के हवाई हमले में 8 बच्चों सहित 11 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभ रात्रि।